नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलनी राव। मल जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में थारून मणिपल्ली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इटली के बीच जारी। इंडियन वेल्स टेनिस मास्टर्स के पुरुष डबल सेमीफाइनल में यूकी भांबरी और आंद्रे गुरानसन का सामना आर्थर रिंडरकनेच और वैलेंटीन वाचेरोट से। और विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत के 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित किए। चर्चा की शुरुआत करते बैडमिंटन से। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में थारून मणिपल्ली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। थारून ने मलेशिया के जस्टिन हो को 21-14 22-20 से हराया। वहीं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के कंधे में दर्द के कारण उनकी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष जोड़ी ने आज स्विस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले ही टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रंकी रेड्डी और शेट्टी ने हिरोकी ओकामुरा और क्योही यामाशिता को 21-15 15-21 28-26 से हराया था। काफी दुखद खबर है कि इतनी बड़ी जोड़ी सात्विक जिनसे उम्मीदें रहती हैं वो भाग न ले सके।
देखिए, बार बार ये चोट से परेशान होते रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। और उनका जो दाहिना कंधा है वो बार बार जिसको कहते हैं वियर रंठिया, लगातार खेलने के कारण उसमें चोट जो लगती है उसे उबर पाने के लिए उन्हें कुछ आराम की जरूरत होती है। कम से कम एक हफ्ता आराम करने के बाद फिर वो कंधा अपने नॉर्मल लेवल पे आता है। और जो इससे पहले मुकाबला हुआ, जो शानदार जीत उन्होंने हासिल की, वो मुकाबला आपको पता है कि 74 मिनट तक चला था। और इस 74 मिनट के मुकाबले को जब आप इतने निकट से जो मुकाबला हो, इतना करीबी मुकाबला हो, उसमें जब लगातार आप खेलते हैं 28-26 से जीतकर आप क्वार्टर फाइनल में जगह बनाते हैं, अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 21-15 15-21 28-26 74 मिनट का थ्रिलर। और उसमें खेलने के बाद जब कंधे में दर्द हुआ उनको, चोट, सोचिए वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से सरेंडर कर दें, गिव अप कर दें, वो ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब कि चोट काफी परेशान कर रही होगी जिससे उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। मगर तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। और क्या बात है, वो तो जोड़ी है ही ऐसी जो दुनिया में 1-2-3 में हमेशा आती जाती रहती है, तो उनसे उम्मीद भी थी कि बहुत अच्छा करेंगे। और स्विस ओपन में जिस तरह से उन्होंने मुकाबला कल जीता था, मुझे बहुत उम्मीद थी। कम से कम अभी थोड़ी देर जब खबर पहले जब खबर आई कि वो नहीं खेल पाएंगे तो मुझे बड़ा धक्का लगा। विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक जोड़ी जो इतना बढ़िया खेल कर पहुंची थी क्वार्टर फाइनल में, उसे इस तरह बाहर होना पड़ा।
जी, और उधर लेकिन थारून की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है। थारून ने मकाऊ ओपन 2025 के सेमीफाइनल में, थाईलैंड मास्टर्स 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में और जर्मन ओपन 2025 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने जगह बनाई थी। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई खिताब अब तक जीत नहीं सके हैं। वो भी
खिताब भले ही न जीते हों, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय बैडमिंटन में जो उदीयमान सितारे लगातार अच्छा प्रदर्शन करके और पुराने सितारों की जगह लेने की कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं, उनमें थारून का भी नाम है। और जिस तरह से उन्होंने जस्टिन हो को 21-14 22-20 से 43 मिनट तक चले मुकाबले में बिल्कुल आसानी से हरा दिया, बहुत कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से, क्योंकि 14-13 का स्कोर था। उसके बाद 7 अंक अगले 7 इनकी झोली में आए। और दूसरा गेम जो था वो भी बहुत ही आसानी से 13-7 की लीड लेने के बाद वो जीत गए। तो जो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि 19-20 पर पहुंच गए और पॉइंट्स, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये एक बात होती है जो जिसको कहते हैं रिसिलियंस, आप हारते हारते अपनी हार को भूलकर जीत में बदल दें, तो वो इस खिलाड़ी में, युवा खिलाड़ी में देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सवाल आपने पहले पूछा कि अब क्या भारतीय बैडमिंटन के भविष्य में जो सितारे उदयमान चमचमा रहे हैं आकाश में, उनमें थारून को भी क्या हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। और ये बहुत अच्छा संकेत है जो स्विस ओपन से आया है।
जी, और उम्मीद करेंगे थारून न सिर्फ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल भी जीत कर ये खिताब अपने नाम करें। चर्चा कर लेते हैं हॉकी पर। हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इटली के बीच जारी है। अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने वेल्स को 4-1 से हराकर हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वहीं तेलंगाना में हुए मुकाबले में नवनीत कौर के शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। तो बेहतरीन प्रदर्शन लगातार भारत का रहा। अगर हम ये देखें कि इस साल 14 से 30 अगस्त के बीच पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप भी जो आयोजित होना है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और अन्य शहरों पर भी, तो ये जो टूर्नामेंट है कितना अहम हो जाता है उसके मद्देनजर?
देखिए, भारत तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, जगह बना चुका है
जी।
और इटली के साथ अगर आप देखेंगे तो भारत और इटली के बीच जितने मुकाबले हुए हैं, 2 बार ही सिर्फ इटली, 7 बार भारत जीता है
जी।
तो ये बहुत कड़ा मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत के फॉर्म को देखें तो पहले उरुग्वे को 4-0 से हराया, उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ, हालांकि टाइट मैच था वो, 2-2 से वो ड्रॉ रहा, और फिर 4-1 से वेल्स पर उन्होंने विजय हासिल की भारतीय लड़कियों ने। तो जो ये एक नया चेंज आया, फिर से पुराने कोच को बुलाया गया, जो डच कोच हैं शूद मारियन
जी,
उनको दोबारा बुलाया गया, और हरेंद्र सिंह के समय में जो गड़बड़ाई थी टीम, उन्होंने क्या किया, नए चेहरों को शामिल किया, युवाओं को, युवतियों को मौका दिया, और उसके साथ साथ पुराने लोगों को भी रखा। और नवनीत कौर, जिनकी चर्चा आपने की, जिन्होंने हैट्रिक लगाई पिछले मैच में, बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन नवनीत का भी रहा है, और इतना बढ़िया खेला उन्होंने। इसी तरह से अगर आप इटली की बात करें तो वहां एक खिलाड़ी है फेडरिका काटा, उन्होंने भी बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है, बहुत ही आक्रामक मुद्रा में खेलती हैं, 3 गोल अभी तक इस कॉम्पिटिशन में उन्होंने किए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत के लिए बिल्कुल केक वॉक होगा, आसान होगी ये जीत, लेकिन जिस तरह से भारतीय लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और एक बात और है कि माथे पर से ये बोझ हट चुका है कि हमें क्वालिफाई करने के लिए खेलना है, क्वालिफाई वो कर चुकी हैं। आपको पता है कि जो टीम का फॉर्मेट है और जो नियम है उसके हिसाब से पहली 3 टीमें और फिर जिसकी रैंकिंग बेटर है चौथे में दोनों पूल में से, तो एक सैंटियागो में मुकाबला हो चुका है, वहां जापान है, जापान की 15वीं रैंकिंग है, भारत की 9वीं रैंकिंग है, तो भारत का जाना तय है। इसलिए लड़कियों को आज बिल्कुल खुले दिल से खेलना चाहिए और अपना सब कुछ लगाकर खेलना चाहिए, क्योंकि आज जो उनका माइंडसेट होगा वो एक विजेता का माइंडसेट होगा, उसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं दिखाई देगा
जी। चर्चा कर लेते हैं टेनिस पर। कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स टेनिस मास्टर्स के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज यूकी भांबरी और आंद्रे गुलानसन का सामना आर्थर रिंडरकनेच और वैलेंटिन वाचेरोट से होगा। भांबरी और गुलानसन ने अलेक्जेंडर एडलर और एंड्रिया वावासोरी को 6-3, 7-6 से हराया था। अगर हम भांबरी की बात करें तो पिछले महीने ही 20वें नंबर पर आई थी वो। रोहन बोपन्ना के बाद टॉप 20 में जगह बनाने वाले वो पहले पुरुष डबल्स खिलाड़ी बन चुके हैं। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं भांबरी,
बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और एकमात्र प्रतिनिधि हैं इस बार वो इंडियन वेल्स मास्टर्स के, जिसमें कि आपको पता है कि पहले रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा और लियांडर पेस, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर विजय हासिल की थी। तो अगर आप देखें कि जिस तरह से स्वीडन के एंड्रे गोरानसन के साथ वो मुकाबला उनका हुआ, तो उसको अगर आप नजर डालें तो जो उनकी भी स्कोर लाइन है वो ये कहानी कहती है कि उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था, 6-3, 6-7
जी,
हाँ, तो 7-6 सॉरी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने अंतिम 4 में जगह बनाई, और ये जो 20वीं रैंक है ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो सेमीफाइनल्स में जाने के लिए करियर हाई, जो चरमोत्कर्ष अभी तक उनके खेल जीवन का रहा है, उसमें उनको 20वीं रैंक मिली हुई है विश्व वरीयता क्रम में, ATP में, 1000 इवेंट में, इतना बढ़िया प्रदर्शन इसलिए उनका देखने को मिला। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इसी तरह से वो खेलते रहे तो जिस तरह से वो रोहन बोपन्ना के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, उसी तरह से आगे भी उनको रोहन बोपन्ना ने 2023 में, मुझे अगर ठीक से याद है तो 3 साल पहले ये इंडियन वेल्स टूर्नामेंट जीता था, और उसके पहले फिर सानिया मिर्जा ने 2011-2015 में जीता था, और लियांडर पेस ने तो कई साल पहले 2007 में जीता था। तो अगर भांबरी और गुरानसन की जोड़ी इसी तरह से अच्छा करती रही तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको फाइनल्स में तो कम से कम देखने को मिलेंगे ही और टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं।
जी बिल्कुल। और उधर श्रोता आपको बता दें कि यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव और दानिल मेदवेदेव भी पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं एरिना सबालेंका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका ने विक्टोरिया एम्बोको को 7-6, 6-4 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश किया। चर्चा कर लेते हैं मुक्केबाजी पर। विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत के 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। गुंजन 48, जयश्री देवी 54, अंबेकर मितई 50, चंद्रिका पुजारी 51 और राधामणि लोंगजाम की 57 किलोग्राम की जीत से भारत की पदक की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। सुबह के सत्र में गुंजन ने अजरबैजान की गुलर हुसैनोवा पर 5-0 की जीत हासिल की, जबकि जयश्री देवी ने पहले दौर में जापान की यूरा कनेमारू को हराया। अंबेकर मितई ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में जापान के अकीरा उएकुबो पर 4-1 से जीत दर्ज की। शाम के सत्र में भारतीय मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी और राधामणि लोंगजाम ने जीत दर्ज की। चंद्रिका ने 51 किलोग्राम वर्ग में स्पेन की एंड्रिया बुएल्गा गार्सिया को RSC से हराया, जबकि राधामणि लोंगजाम ने इंग्लैंड की सियोभान हेली को 4-1 से मात दी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
पिस्टल निशानेबाज सम्राट राणा और सुरुचि सिंह, एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह और विश्व चैंपियन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत सहित 8 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। मले जी, भारत सरकार का जो स्कीम है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जो सितंबर 2014 में शुरू हुई थी और ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक की प्रबल संभावना वाले खिलाड़ियों को इसके तहत वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो बहुत अहम पहल है भारत सरकार की।
बहुत ही अहम। देखिए, आप जब किसी खिलाड़ी को ओलंपिक के पदक मंच तक पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको प्रतिभा तलाशनी होती है जब बहुत ही कम उम्र का वो खिलाड़ी हो
जी।
उसी समय प्रतिभा की पहचान करके और लगातार प्रशिक्षण देना और फिर उसको तराशना, तराशते तराशते उसको उसकी मनस्थिति को एक कॉम्पिटिटर, एक प्रतिभागी नहीं प्रतियोगी की मनस्थिति में बदलना, पार्टिसिपेंट नहीं कॉम्पिटिशन, कि मुझे जाना है और कुछ वहां करके आना है और पदक हमारे गले में पड़ेगा और जब राष्ट्रगान बजेगा और जब झंडा तिरंगा ऊपर जाएगा तो हमें और हमारे देशवासियों को कितनी खुशी होगी, इसका एहसास दिलाना, ये बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से ये प्रयास चलता रहा है और इसमें आपको पता है कि कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रमों ने भी इसमें कुछ कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए आए और हट गए। जैसे लक्ष्मी नारायण मित्तल आए, थोड़े दिनों तक उन्होंने सपोर्ट किया, बाहर हो गए। तो इस समय भारत सरकार ने इस स्कीम को, इस योजना को आगे, टॉप स्कीम कहते हैं इसे हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में, छोटे में, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए। और फिर देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि बिग मैच टेम्परमेंट, जब खिलाड़ी को आप उतारते हैं बड़े मैदान पर बड़े खिलाड़ियों, दुनिया के नामी गिरामी खिलाड़ियों के साथ, तो उसको वहां उस बात को आत्मसात करने में कि यहां कुछ भी असंभव नहीं है, मैं भी ये कर सकती हूं, मैं भी ये कर सकता हूं, और वो जो भावना होती है वो सिर्फ प्रशिक्षण से आती है, उसके उसको लगातार अच्छे पौष्टिक आहार प्रदान करना, अच्छी कोचिंग प्रदान करना, इंजरी हो तो उसको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सब बातें उसी टॉप स्कीम का हिस्सा है।
जी, और श्रोता आपको बता दें कि कोर ग्रुप के एथलीटों को प्रतिमाह 50,000 रुपए और जूनियर एथलीटों को विकास समूह के तहत 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। चर्चा कर लेते हैं गोल्फ पर। गोल्फर लावण्या गुप्ता ने हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर का खिताब जीत लिया है। 5वें दौर में लावण्या ने दुर्गा नित्तूर और जैस्मिन शेखर को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर भारतीय मूल के अमेरिकी गोल्फर साहित थिगाला प्लेयर्स चैंपियनशिप के पहले दिन 5 अंडर 67 स्कोर करके संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। थिगाला के साथ मावेरिक मैकनीली, ली हाजिस, सेप स्ट्राटा और ऑस्टिन स्मूदन भी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड के आईपीएल में खेलने पर संशय बना हुआ। हेजलवुड चोट के कारण एशेज और T20 विश्व कप में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे, चाहे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी की बात कर लें।
हाँ बिल्कुल, नजर तो आएंगे, हालांकि कई अटकलें चल रही हैं, लेकिन हेजलवुड का नहीं खेला जाना अच्छा नहीं होगा।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मलय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ